तो आज के इस महाशिवरात्रि के दिन 20 फरवरी को आप सबका श्री नंदग्राम में स्वागत है। नंदग्राम धाम की कृष्ण बलराम की नंदग्राम कृष्ण बलराम का नित्य निवास स्थान है, इटर्नल रिजाइडिंग प्लेस ऑफ कृष्ण एंड बलराम। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आ पाए। श्री कृष्ण बलराम अपने माता पिता के साथ, अपने सखाओं के साथ यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। देव मीड नाम के राजा थे, जिनके दो पत्नियां थी, एक शतराणी थी और एक वैश्य थी। शतराणी पुत्र से पत्नी से उनको पर्जन्य नाम के नहीं वैश्य पत्नी से उनको पर्जन्य नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। और पर्जन्य जो थे वो बड़े भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे और वो गोकुल महावन में रहते थे। ऐसे कहते हैं कि पर्जन्य महाराज सद्गुणों के सागर थे और अपने प्रजा के प्रति, गायों के प्रति उनको बहुत प्रेम था। पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, उनका नाम है उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। इसमें से नंद महाराज बीच में हैं, उपनंद अभिनंद उनके बड़े हैं और नंदन और सुनंद उनके छोटे हैं। तो ये सब लोग नंदगांव में आके बसे। पर्जन्य बाबा महावन में थे, गोकुल महावन में। और इन 5 पुत्रों में से सभी लोग भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, लेकिन जो नंद महाराज थे वो बड़े ही सब में श्रेष्ठ थे। और पर्जन्य महाराज जी ने अपना राज्य जो है वो सबसे बड़े बालक को दे दिया, उपनंद महाराज को। लेकिन उपनंद महाराज अपने सब भाइयों से चर्चा करते हैं कि हम सब में से नंद जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, भले मुझसे छोटे हैं लेकिन गुणों में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए बड़ा भाई होने पर भी और उनका अधिकार होने पर भी बड़े भाई ने मिला हुआ राज्य जो है नंद महाराज को सौंप दिया। कितनी बड़ी बात है, देखो कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार किसको देता नहीं है कभी भी, जो अपना नहीं है वो भी छीनने का प्रयास करता है। इट इज नॉट दैट वी ओनली गेट व्हाट वी डिजर्व, वी ट्राई टू यूसर्प द अथॉरिटी ऑफ अदर्स ऑल्सो इन आवर लाइफ। And in this case, the authority which is already received naturally is being given to somebody else who is younger and apparently less qualified in material sense. तो ब्रज भूमि का यही भाव है, अगर आपको यहां पर एंट्री करना है सही रूप से, शरीर से नहीं, सही रूप में यहां पर एंट्री करना है तो ये भाव जो है ना दूसरों को सम्मान देने का, खुद के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करने का, नम्रता से रहना है और दासत्व में भगवान की सेवा में रहना है। इसी भाव से हम लोग सच में ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को राज्य दे दिया और बड़े संकोच से ना करते हुए भी उनको लेना पड़ा नंद महाराज को। तो ये सभी भाई लोग एक साथ में, इसी शास्त्र में वर्णन आता है गर्भ संहिता में, ये 5 भाई अपने सब पुत्रों के साथ में यहां बड़े प्रेम से रहते थे। तभी आप उनके घर में आए हैं तो उनके परिचय, परिवार का आपको परिचय करा देते हैं। यू हैव टू गेट एक्वेंटेड विद द फैमिली ऑफ नंद महाराज। सबसे पहले हैं उपनंद बाबा, उनके पत्नी का नाम है प्रभावती, याद है ना प्रभावती? आपको कथा बताया कि नहीं? मैंने नहीं बताया, आपको नहीं बताया, बताऊंगा। ये प्रभावती देवी थी ना, उनका एक और नाम भी है तुंगी। और वो 2 इंच अपने पति से बड़ी थी, ऊंची, इसको तुंगी कहते थे। एक शास्त्र का नाम है और एक ब्रजवासियों का अपना नाम है। वन इज अ स्क्रिप्चरल नेम, वन इज अ निक नेम केप्ट बाय द ब्रजवासीज। सो तुंगी के और उपनंद बाबा के 2 बच्चे थे, एक है ऋषभ और एक है देवप्रस्थ। फिर अभिनंद बाबा, महानंद भी नाम है उनका, अभिनंद महानंद, इनकी पत्नी का नाम है सुषमा और उनका निक नेम है पीवरी, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी थी इसलिए उनको पीवरी कहते थे। और सुषमा देवी और अभिनंद महाराज के 2 बच्चे थे, विशाल और तेजस्वी। और दो छोटे जो, फिर उसके बाद नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा का विवाह यशोदा से हुआ, यशोदा यहां से गांव है, उसका नाम है मेहरानो, मेहराना। और यशोदा का ऐसा गौरव था कि जहां पर भी वो रहती थी, जहां पर भी वो थी, जहां पर भी जन्म हुआ उसका, हमेशा उस जगह पर यश होता था। यशोदा यश देने वाली, वन हु गिव्स ऑलवेज सक्सेस टू एवरीबॉडी। तो ऐसे धन्य कन्या के साथ में नंद बाबा का विवाह हुआ और उनको कृष्ण बलराम प्राप्त हुए। वैसे तो बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं और कृष्ण यशोदा के पुत्र हैं। वैसे ये आदि पुराण में लिखा गया है और गर्भ संहिता में उपनंद बाबा के पति पत्नी का वर्णन किया गया है। उसके बाद में है सुनंद, सुनंद महाराज, उनकी पत्नी का नाम था कुवला देवी और कुवला देवी के 2 पुत्र थे, अर्जुन और अंशु। और लास्ट थे नंदन चाचा, छोटे भाई सबसे, उनकी पत्नी का नाम है अतुला देवी और अतुला देवी के 2 पुत्र थे भद्रसेन और स्तोक कृष्ण। और यही कृष्ण के अष्ट सखा हैं जिनके साथ में वो लीला करते थे। तो वहां पर कैसे नंदगांव बरसाने में कैसे हैं, 9 भाई हैं और ब्रजभानु महाराज को 8 भाई हैं और एक 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 पुत्री है और सब मिलके अष्ट सखियां बन जाती है। यहां पर 5 भाई है, नंद बाबा को 4 भाई हैं, वो 4 भाइयों को 2-2 पुत्र हैं, सबको 2-2 हैं, कृष्ण बलराम भी 2 हैं, सबको बाकी भी 2-2 हैं। तो ये 2 और उनके 8 सखा, इस तरह से सब परिवार जो है बड़े प्रेम से यहां पर रहते थे। ये यहां पर लिखा है, आदि पुराण में वर्णन आता है कि सभी नंदों ने ब्रज में बहुत प्रेम से निवास किया। और नंद की जो पदवी है नंद, ये उनको मिलती है जिनके पास मिनिमम 9 लाख गाय हैं, उनको नंद की पदवी मिलती है। और भानु पदवी उनको मिलती है जिनके पास 12 लाख गाय हैं या तो उसके ऊपर है, इसलिए वहां पर सब भानु हैं, गुण भानु, धर्म भानु, सर्व भानु, ऋष भानु, यहां पर सब नंद हैं, अभिनंद, सुनंद, महानंद, नंदन चाचा, सुनंद, अभिनंद, उपनंद। उनका ऐसे भी एक कथा आती है कि ब्रजभानु महाराज इसके पहले राजा थे, उनके पास सब साम्राज्य था पूरा। अब अपने मित्र, परम मित्र, उनके परम मित्र नंद महाराज के साथ में प्रेम की वजह से उन्होंने उनको बहुत सारा राज्य दे दिया और वो ये नंदगांव का राज्य है। ये बात कहां पर आती है कि जब भी सांकरे कोर पे कृष्ण भगवान सखाओं को लेकर सखियों को रोकते हैं और कहते हैं कि हमको टैक्स दो, ये सब हमारा राज्य है, तो राधा रानी कहती है ये तुमको किराए में मिला हुआ राज्य है, ये सब मेरे पिताजी का राज्य है। जैसे ना इन जैसे कैसे बताएं आपको, एकदम पावरफुल भाषा में बताते हैं कि ये जो तुम्हारे पिताजी ने पगड़ी पहन कर रखी है ना, ये हमारे पिताजी ने आपको दी है। मतलब यू हैव बीन गिवन द क्राउन ऑफ किंग बींग अ किंग ऑफर्ड इन फ्रेंडशिप बाय माई फादर टू योर फादर एंड यू आर नाउ ट्राइंग टू बिकम वेरी स्मार्ट दैट दिस इज योर लैंड, दिस इज नॉट योर लैंड, दिस इज आवर फादर्स लैंड, यू हैव बिकम अ ओब्लाइज्ड किंग, दैट मीन्स वी हैव ओब्लाइज्ड यू बाय मेकिंग योर फादर अ किंग। इट्स अ वेरी वंडरफुल लैंग्वेज, वेरी वेरी पिंचिंग। ये जो पगड़ी पहने हो ये मेरे पिताजी ने आपको दी हुई है, किराए की पगड़ी है ये। ऐसे बात वहां पर आती है तो उसमें समझ जाता है कि ब्रजभानु महाराज बड़े धनी थे राधा रानी के पिता होने के कारण। तो आप जानते हैं कि नंद महाराज यहां पर उनको पुत्र नहीं प्राप्ति हुई, 85 साल तक उनके उम्र में। तो वृषभानु महाराज से चर्चा किया उन्होंने और सब लोग जमुना किनारे चले गए। रावल में वृषभानु महाराज गए और गोकुल में नंद महाराज गए। और जब नंद महाराज गोकुल में गए तभी कंस ने अपने बहन को अरेस्ट कर लिया था, जेल में डाल दिया था। तो उस समय रोहिणी गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने चुपके से अपनी रोहिणी को अपने दोस्त के पास भेज दिया। वसुदेव और नंद महाराज भी चचेरे भाई हैं। देव मिड़ के और एक पुत्र हुए, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वो शूरसेन होगा, शायद उनका नाम शूरसेन। और शूरसेन के पुत्र जो है वसुदेव हैं, क्षत्रिय पत्नी के पुत्र हैं। शूरसेन, उग्रसेन तो कंस के, वो तो कजिन है कंस उसका। देवकी जो है वो देवक राजा की कन्या है, देवक राजा। और देवक राजा की कन्या का नाम है देवकी, और देवकी का कजिन भाई है वो, जिसके पिताजी उग्रसेन है, वो सगे भाई बहन नहीं है। जब कंस का आतंक हुआ तो चुपके से नंद महाराज के जो भाई भी हैं और बड़े मित्र भी थे उनके अच्छे, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने भाई के पास गोकुल में भेज दिया ताकि वो सुरक्षित रहे, उनका जन्म ठीक से हो। और एक रहस्य की बात आपको सबको पता होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए सब लोग, कि यशोदा जो है वो कृष्ण भगवान की चिरंतन माता है, शी इज द इटर्नल मदर ऑफ कृष्ण। तो गोकुल में जब जमुना किनारे वो गए तो यथावकाश भगवान की योजना के अनुसार कृष्ण भगवान जो ओरिजिनल कृष्ण है, द्विभुज कृष्ण, दो भुजा वाले जो गौलोक में रहते हैं, वो नंद महाराज के हृदय में प्रकट हो गए। तो नंद महाराज बहुत सुंदर हो गए, एकदम सुंदर प्रकाशमान हो गए, उनका प्रकाश चारों ओर फैल गया। फिर वो कृष्ण भगवान नंद महाराज के हृदय से यशोदा के हृदय में आए। यशोदा बहुत ही सुंदर और तेज वाली बन गई, उसका प्रकाश चारों दिशा में फैल गया, इतनी सुंदर हो गई वो यशोदा। तो हृदय से भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। इसका मतलब क्या होता है, भगवान जब जन्म लेते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं होता है, हमारा जन्म अलग तरीके से होता है। भगवान जो है अवतरित होते हैं, आते हैं वो, he descends। तो जब गर्भ में भगवान की अवतार हुआ देवकी यशोदा के, तो बहुत तेज पुंज हो गई, बहुत खुशी फैल गई सब जगह पर, सब जगह आनंद फैल गया। उसी समय वसुदेव और देवकी जेल में थे, उनके छह पुत्रों का नाश किया गया, कंस ने मार दिया उनको। सातवें पुत्र के रूप में अनंत शेष शंकरषण जी प्रकट हो गए। लेकिन रोहिणी भी भगवान की, बलराम जी की चिरंतन माता है, शी इज द इटर्नल मदर ऑफ ओरिजिनल बलराम फ्रॉम गोलोक वृंदावन। तो वो बलराम जी रोहिणी के गर्भ में थे, और यहां पर देवकी के गर्भ में संकर्षण जो बलराम जी के अवतार हैं, जो बलराम जी के अवतार नाग है ना, वो विष्णु को अपना शेषशायी बना देते हैं, मतलब बिस्तर बनते अपने उनके लिए, ही बिकम्स अ बेड फॉर विष्णु। तो वो जो बलराम जी के अवतार हैं कला अवतार, वो अंशावतार देवकी के गर्भ में आए। फिर भगवान ने गौलोक से माया देवी को, योग माया को आदेश दिया कि मेरा भाई का जो गर्भ है देवकी के गर्भ से, उसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो। तब जाकर रोहिणी के गर्भ से योग माया ने अदृश्य तरीके से संकर्षण यानी कि अनंत शेष को ट्रांसफर करके रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी थे उसको मिला दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये अनंत शेष जो है वो बलराम जी के साथ में मिल गए, एक हो गए। टेल इन इंग्लिश ऑल्सो, द एक्सपांशन ऑफ बलराम दैट इज अनंत शेषा वॉज लाइंग इन दी वूम्ब ऑफ देवकी वॉज ट्रांसफर्ड बाय द पावर ऑफ योग माया टू द वूम्ब ऑफ बलराम बलराम रोहिणी एंड ही मर्ज्ड विद द बलराम इन द वूम्ब ऑफ रोहिणी। क्या हो गया? तो इस तरह से यहां पर न्यूज फैल गया कि देवकी का गर्भपात हो गया, द न्यूज स्प्रेड दैट शी लॉस्ट हर बेबी. और उसके बाद में कृष्ण भगवान जो विष्णु अवतार है उनका, कृष्ण भगवान का चतुर्भुज अवतार जो है वो देवकी के गर्भ में प्रवेश किया उसने. पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में आए, वो देवकी बहुत सुंदर हो गई. जेल जो है, जेल में प्रकाश फैल गया और फिर देवकी के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया. जब देवकी के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया तो सारे देवता लोग जेल में आए जिसमें वो कैद थी, और सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है और देवकी की प्रदक्षिणा भी की है. श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन आता है, बहुत बड़ा अध्याय है, उसके अंदर सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि सभी देवता आकर उन्होंने देवकी को प्रदक्षिणा किया है और भगवान ने जो गर्भ में अवतार लिया उसका उन्होंने स्तुति किया है, प्रार्थना की है. तो जब भगवान का जन्म का समय आया तो भगवान ने योगमाया को आदेश दिया था कि जब संकर्षण को आप ट्रांसफर करोगे उसके बाद में आप मेरी बहन के रूप में यशोदा के गर्भ में जन्म लेना. तो एक्चुअली यशोदा ने ट्विंस को जन्म दिया था, एक द्विज कृष्ण और एक उनकी बहन योगमाया. लेकिन यशोदा को पता नहीं था, वो इतनी थक गई थी डिलीवरी के कि कितने बच्चे हुए. ये भगवान की इच्छा है, आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, व्हेन वी डिलीवर वी नो हाउ मेनी चिल्ड्रन वी डिलीवर. पर भगवान की इच्छा से क्या नहीं होता. भगवान ने यशोदा को योगमाया के प्रभाव में सुला दिया और दो बच्चे पैदा हो गए, एक कृष्ण द्विभुज वाले और एक योगमाया. तो योगमाया, फिर कृष्ण का जन्म होता है उधर जेल में, लेकिन भगवान बड़े रूप में, मतलब पूरे फुल ग्रोन साइज में, चार भुजा वाले विष्णु बनकर दर्शन देते हैं और देवकी को याद दिलाते हैं कि तुमने और तुम्हारे पति ने पिछले जन्म में बहुत तपस्या किया था 12,000 साल तक, और तुम्हारी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊं. मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में पहली बार नहीं आया हूं, मैं कई बार आया हूं. सबसे पहले आप पृष्णी और सुतपा नाम के अवतार आपका था. सुतपा और पृष्णी के रूप में मैं आपका पुत्र बनकर आया था, पृष्णी गर्भ के नाम से. उसके बाद में जब इंद्र ने दुर्वासा का अपमान किया और उसका राज्य नष्ट हो गया तो बलि महाराज, उस समय बलि महाराज ने इंद्र का राज्य छीन लिया, क्योंकि इंद्र ने दुर्वासा ब्राह्मण का अपमान किया और बलि महाराज ने ब्राह्मणों का सेवा किया, क्योंकि उसके गुरु ब्राह्मण है शुक्राचार्य. तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि महाराज जीत गए और पूरे इंद्र को भगा दिया उसने. फिर इंद्र ने, इंद्र की माता ने भगवान से प्रार्थना किया और पयो व्रत किया. पयो व्रत, उसका वर्णन भागवत में आता है. तो उस व्रत के फल के अनुसार अदिति और कश्यप, ये उनका दूसरा अवतार था, पृष्णी और सुतपा का दूसरा जन्म हुआ तभी उनका नाम था अदिति और कश्यप. और अदिति और कश्यप के गर्भ में भगवान वामन ने अवतार लिया, बटू वामन, उसको उपेंद्र कहते हैं क्योंकि वो इंद्र का भाई है, क्योंकि अदिति इंद्र की माता भी है. तो अदिति ने प्रार्थना किया था कि मेरे पुत्र जो देवता हैं उनका सब राज्यहीन हो गए वो अभी, तो उनके छोटे भाई के रूप में आए भगवान वामन, इसलिए उनका नाम और एक नाम उपेंद्र भी है. तो भगवान को याद दिला रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके पुत्र के रूप में आया, वामन के रूप में. अभी इस जन्म में आपका नाम वसुदेव और देवकी है तो वही मैं कृष्ण हूं, वही मैं हूं जो आपके लिए दोबारा आया हूं. आप मेरी चिरंतन माता हैं और मैं आपका चिरंतन पुत्र हूं, लेकिन इस अवतार के बाद में आप मेरे धाम में चले जाओगे. ये आपका तीसरा, आपके गर्भ में मेरा अवतार है, इस जन्म के बाद आप गोलोक धाम में प्रवेश करेंगी. तो फिर भी वो माता थी, वो डर रही थी, अरे कंस का भय यहां पर है, आपको देखकर आए, देखकर कंस गुस्सा करेगा और आपको मारने का प्रयास करेगा, इसलिए आप बालक बन के आ जाओ. तो उस समय चार भुजा वाले विष्णु जो हैं वो दो भुजा वाले छोटे से बालक बन गए और विष्णु अदृश्य हो गए. उस बालक को लेकर भगवान ने उनको आदेश दिया कि मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ और वहां पर जो कन्या जन्म हुआ है उसको यहां पर ले आओ। तो उस समय ऐसे कहा गया है कि योगमाया स्वयं जो यशोदा के पास में बालक हुआ था दो भुजा वाला, उसको उठाकर वहां ले जाती है और वो दो भुजा वाला रूप जो है वो विष्णु वहां प्रकट करते हैं। समझ में आपको आया? चार भुजा वाले विष्णु थे। जब यशोदा देवकी ने विनती किया कि आप बालक बन के आ जाओ, तो उस समय भगवान की इच्छा से योगमाया ने उस बालक को वहां से उठाकर वहां पर प्रकट कराया। फिर उस बालक को वसुदेव ने उठाकर जमुना जी के अंदर से फिर गोकुल लेके आए और वहां पर रखा और बालिका को लेकर वो वापस चले गए। इज इट वेरी क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है सब इसमें, लेकिन भगवान की लीला है। ये रहस्यमय बातें हैं, ये भागवत में भी नहीं दिया है। ये गोपाल चंपू और गर्ग संहिता ऐसे सुंदर सुंदर शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। ये सब रहस्य की बात, वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, यू नो। वसुदेव जब निकले वहां से तो टोकरी में लेकर निकले तो तुरंत अनंत शेष उसके ऊपर आ गए। वर्षा का प्रभाव नहीं होना चाहिए, बहुत वर्षा हो रही थी भयंकर उस समय, सब पहरेदार सो गए। और जब ये लाल लौट के आए जमुना जी में उतरे तो जमुना जी ऊपर 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 आने लगी। आप समझ सकते हैं जमुना जी कब से वेट कर रही है भगवान का, आएंगे भगवान अवतार लेंगे, गौलोक वृंदावन से आएंगे, मुझे सेवा देंगे। तो उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए वो व्याकुल थी, तो भगवान ने अपने चरण टोकरे से बाहर निकाले। वसुदेव को क्रॉस करके जमुना जी उसके सर के ऊपर चली गई और भगवान के चरणों को स्पर्श किया जमुना जी ने। और एक अलग शास्त्र में लिखा है कि भगवान टोकरे से गिर गए, इतनी जोरदार लहरें थी कि वो बैलेंस नहीं कर पाए, भगवान गिर गए, जानबूझ के गिर गए। उनको जमुना जी में डूबना था इसलिए। फिर उन्होंने कोई लो वृंदाला को ले लो, कोई लो। तो उस घाट का नाम पड़ा कोई लो घाट। तो भगवान को फिर उसने उठाया और टोकरे में रखा। जब जमुना जी तुरंत रास्ता दे दिया, भगवान का स्पर्श होते ही रास्ता दिया, फिर वो चल के गए अंदर। और रात के समय पर यशोदा जो है डिलीवरी के ग्लानी से थककर सो रही थी, तो वहां पर उस बच्चे को रखा जो पहले वहां जन्म हुआ था, जिसका बालिका को उठाया, फिर जमुना जी ने रास्ता दिया, फिर गए और वहां पर फिर आगे की कथा आती है ना, बहुत लंबी कथा है वो। इस तरह से कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ नंदगांव में, हरी गोकुल में। और तीन साल चार महीने के बाद में उनको वापस लाया गया। उसका वर्णन आनंद वृंदावन चंपू में आता है, बहुत लंबा, कैसे वो शिफ्टिंग किया उन्होंने गोकुल रावल से नंदगांव बरसाने में, बहुत लंबा वर्णन है। तो यहां पर जब आके लौटे तो ऋषिमानु महाराज बरसाने में गए वापस, लाली को लेकर, राधा रानी को, और कृष्ण बलराम को लेकर। उपनंद बाबा, सुनंद बाबा, महानंद, अभिनंद सब लोग यहां पर लौट के आए और यहां पर बस गए। तो ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है, खेलने की जगह है, यहां पर अनंत लीला है भगवान की। और गौलोक वृंदावन से जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं, भूमि पर आते हैं ना, भूमि देवी यानी पृथ्वी, तो इस वृंदावन को भौम वृंदावन कहते हैं। भूमि का वृंदावन भौम, जब भूमि का और वराहदेव का संबंध हुआ तो जो पुत्र हुआ उसका नाम भी भौम है, लेकिन उसका आगे जाकर बाणासुर से संग किया उसने, गलत संग किया, इसलिए वो भौमासुर बन गया, नरकासुर भौमासुर एक ही, उसका भगवान ने आगे जाकर वध किया है। तो यहां पर जो भगवान आके बसते हैं तो गौलोक वृंदावन में और यहां के वृंदावन में कुछ अंतर है तो वो सेम ही सेम, वहां का ही हिस्सा है वो, लेकिन फिर भी जब भगवान लीला करते हैं तो कुछ अंतर रखते हैं, जरूर विविधता रखते हैं। यहां पर राक्षस लोगों का आना जाना होता है इस भूमि में, वृंदावन में, क्योंकि गौलोक वृंदावन में राक्षस नहीं है, केवल भगवान के भक्त हैं सब। लेकिन फिर भी भगवान को कुश्ती खेलने की, युद्ध करने की, मारामारी करने की इच्छा होती है, उसको कहते हैं वीर्य रस। कुल 13 रस हैं, उसमें एक है वीर्य रस, उसमें वीरता का भी प्रदर्शन करने का भगवान को इच्छा होती है। तो वहां पर तो खेल खेल में खेलते ना, मारामारी करते हैं, हम भी हमारे बच्चे के साथ मारामारी करते थे बचपन में जब छोटी सी, लेकिन हमेशा हम हारते थे उसके अंदर जानबूझ के, क्योंकि वो खेल खेल की प्रेम की लड़ाई थी। जब हम कुश्ती खेलते थे बच्चों के साथ छोटे छोटे, तो जानबूझकर हार जाते थे और बच्चों को विजयी बनाते थे। लेकिन वो क्या है, असली युद्ध नहीं है, वो है प्रेम प्रेम का। मराठी में कहते हैं लुटी पुटू ची मारावारी, लुटू पुटू का युद्ध बोलते हैं उसको। भगवान को असली युद्ध खेलने की भी इच्छा होती है, इसलिए वहां के कुछ भक्तों को चुनते हैं वो, वहां के कुछ भक्तों को चुनते हैं और उनको यहां राक्षस बना के भेजते हैं। जैसे ये जय विजय है, वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनकर आए, फिर रावण कुंभकर्ण बनकर आए, फिर वो बने दंतवक्र और शिशुपाल। भगवान का जो युद्ध का रस है, कंस कोई भक्त बनकर, कंस भी भक्ति भगवान का है, लेकिन वो भी भगवान के आनंद के लिए राक्षस बनकर आया। सीतामा जो भगवान का, राधा रानी का जो भाई है, वो शंखचूड़ राक्षस बनकर आया। ऐसे ही सब लोग, कोई देवता थे नल कुबेर, फिर वो उन्होंने अपराध किया तो पेड़ बंद कराए, वो भगवान ने उनका उद्धार किया। ऐसे अनंत लोग भगवान के भक्त हैं, लेकिन अलग अलग लीला में भगवान के लिए राक्षस बनकर यहां पर आते हैं। तो असल का युद्ध होता है यहां पर बहुत जोरदार, भगवान को मार देते हैं, अपने वीर रस को तृप्त कर देते हैं। तो वो एक फर्क है कि वहां पर राक्षस नहीं है और यहां पर राक्षस है। वहां पर भगवान का बाल स्वरूप नहीं है, ओके? भगवान वहां पर हमेशा 16 साल के रहते हैं, 16 वर्षीय किशोर अवस्था में रहते हैं, लेकिन यहां पर जब आते हैं छोटे बालक के रूप में जन्म लेते हैं, स्मॉल बेबी, इन्फेंट बेबी, देन क्रॉलिंग, देन टर्निंग अराउंड, देन स्पीकिंग ब्रोकन वर्ड्स। ये सब बाल लीला जो है वो गोलोक वृंदावन में नहीं है, वो केवल यहां पर होती है। और गोलोक वृंदावन में विरह का भाव नहीं है, यहां पर हमेशा भगवान अपने सखियों के साथ में रहते हैं। जब पृथ्वी पर आते हैं तो उसकी भी एक कथा है, बता दूं क्या आपको? सब लोग जग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे ना? हरी बोल। क्योंकि नई कहानी सुनने बताने के पहले यू हैव टू बी श्योर दैट एवरीबॉडी इज अवेक। गोलोक वृंदावन में एक बार भगवान, उधर एक सखी है उनकी, उसका नाम है विरजा सखी, विरजा गोपी, जो नदी के रूप में वहां रहती है, वैकुंठ के और भौतिक दुनिया के बीच में नदी रहती है, उसका नाम है विरजा नदी। तो वो गोपी है, तो उसके साथ में संग कर रहे थे और सीतामा को गार्ड में रखा था। जब हम मिल रहे हैं तो किसी को आने मत देना। तो राधा रानी अपने सखियों को लेकर कृष्ण को मिलने आती है, तो सीतामा उसको रोक लेते हैं, बोले आपको अंदर जाने का अलाउड नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आई हैव टू मीट कृष्णा। तो बाहर इनका झिकझिक होता है, बहुत बहुत झगड़ा होता है। तो विरजा नदी वहां से भाग जाती है, अदृश्य हो जाती है और भगवान भी गायब हो जाते हैं। तो उससे झगड़ा करके राधा रानी अंदर आते, देखते कि कोई नहीं यहां पर, क्योंकि तो उसको पता था कि वो विरजा को मिल रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के गुस्से से वहां पर आती, देखती वहां पर कोई नहीं है, फिर चले जाती है। फिर विरजा नदी दुख में होती है, अरे भगवान से विरह हो गया, तो भगवान उनको फिर मिलने जाते हैं। फिर खबर पहुंचती है राधा रानी को कि विरजा को मिल रहे हैं, तो फिर वो वहां पर पहुंचती है। फिर सीतामा उनको रोकता है, मोबाइल बज रहा है। तो फिर वहां पर वो मिलने जाती है, तो सीतामा वहां पर फिर खड़े हैं गार्ड के रूप में, तो बहुत झगड़ा होता है उनका, है तो भाई बहन लेकिन बहुत झगड़ा होता है कि तुमने हमको मिलने नहीं दिया। तो उस समय विरजा नदी ने, सॉरी राधा रानी ने सीतामा को शाप दिया कि तुम राक्षस बनकर नीचे जन्म लोगे। तो उसने भी बहन को शाप दिया, तुम भी जन्म लोगे, नीचे जन्म लोगे और 100 साल तक अपने प्रियतम से दूर रहोगे। इसके वजह से सीतामा सीतामा बनकर भी आए और राक्षस बनकर भी आए, शंखचूड़ राक्षस बनकर। और राधा रानी ने भी जन्म लिया और 100 साल वो भगवान से दूर रही, जब भगवान मथुरा द्वारका हस्तिनापुर चले गए। ये बहुत सुंदर लीला है भगवान की। गोलोक वृंदावन में जो होता है वो भगवान की दिव्य लीला है, उसके परिणाम से यहां पर भी लीला होती रहती है। तो जब भगवान ने शंखचूड़ को मारा, तो शंखचूड़ का जो शंख था यहां पर बहुत बड़ा, उसको निकाल के भगवान ने बलराम जी को भेंट दिया। और शंखचूड़ के शरीर की जो आत्मा है वो जाकर राधा रानी के भाई सुदामा के शरीर में लीन हो गई। the spark of life from Shankarachuda's body. It left Shankarachuda's body and entered the body of Sridhama, the elder brother of Radharani. इस तरह से बाल रूप का दर्शन नहीं है ना वहां पर, तो सभी देवता लोग व्याकुल रहते हैं भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। तो शिव जी को पता चलता है कि भगवान ने अवतार ले लिया है, अभी गोकुल में से निकलकर नंदगांव में आ गए हैं और बाल रूप धारण करके रो रहे हैं, माता का दूध पी रहे हैं, बहुत सारा लीला हो रहा है। तो उनको इच्छा होती है कि गोलोक धाम में तो दर्शन नहीं है उनके बालक के, पृथ्वी पर हो रहे हैं, चलो देखें दर्शन करके आएंगे। तो बड़ी दर्शन की आशा लेकर नंदगांव में आते हैं। हरे कृष्णा, जय हो। तो नंदगांव में जब आते हैं तो ऋषि बनकर आते हैं, साधु बनकर आते हैं। उनकी पत्नी यहां पर पहले से विराजमान है, पूर्णमासी के रूप में भगवान के साथ लीला कर रही है, सब गोपियों के गुरु बनी हुई है, बड़ी बूढ़ी। उनका पुत्र संदीपनी मुनि है, उनकी नाती जो है वो नंदीमुखी है और नातू जो है वो मधुमंगल है। तो लीला पहले से हो रही है, बढ़िया से यहाँ पर रह रही है वो, भगवान की लीला में उनको प्रवेश है। तो यहाँ पर पूर्णमासी प्रभावित आने का आश्रम है, नंदगांव से बरसाने के रास्ते पर लेफ्ट साइड में है। पूर्णमासी का कुंड भी वहां पर है, वहां पर सांदीपनी मुनि का जन्म हुआ है। तो वो रह रही यहां पर, तो ऋषि बनकर मुनि बनकर शिवजी महाराज यहां आते हैं, नंद भवन में आते हैं। हम जाएंगे नंद भवन में अभी, तो वहां पर आके कहते हैं कि भिक्षा दो। वो कहते हैं कि साधु आया तो भिक्षा दे दो, तो वो फिर उसको कुछ देने लगती है। तो कहते हैं हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो केवल लाला के दर्शन की भिक्षा चाहते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, अरे साधु भिक्षा मांग रहा है, फिर बड़ा गुस्सा आता है उसको। वो कहते हैं कभी आप औरत बन के आते हो, कभी आप बैल बनकर आते हो, कभी घोड़ा बनकर आते हो, कभी हवा बनकर आते हो, हवा, कभी गाड़ी बनकर आते हो, और आप साधु बन के आए हो, सब आप कंस के चेले हो, कंस के कहने पर ड्रेस बदल बदल कर मेरे लाला को मारने के लिए आप आते हो। मैं बिल्कुल लाला का दर्शन नहीं दूंगी आपको, ये मोती धान्य लेना है तो ले लो, तो चले जाओ यहां से। तो साधु महाराज बहुत विनती करते हैं, नहीं बाबा माता नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मतलब कहाँ से आए, कैलाश से आए, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़े दूर से आया, पास में आए हो, मुझे कोई मतलब नहीं आपसे, आप सब लोग राक्षस हो, सब कंस के चेले हो, कंस के भेजे गए मेरे बालक को हत्या करने के लिए यहाँ पर आते हो, मैं कतई तौर पर आपको दर्शन नहीं दूंगी। बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं वैसे साधु नहीं है तो हीरे मोती और माणिक और धान्य के लिए यहाँ पर आए, वो हमको नहीं चाहिए, हम केवल आपके लाला के दर्शन चाहते हैं। हाँ सब लोग तो ऐसे आते हैं, वो तो औरत भी ऐसे आई थी, आपके बालक को दूध पिलाना है। उतना राक्षस थी वो, 12 मील लंबा शरीर था उसका, इतनी भयंकर राक्षस थी वो, विष पिलाने को आई थी, माता बनकर आई थी, आप साधु बनकर आए हो, लेकिन सब लोग तुम एक ही हो, तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे नाटक में नहीं आने वाली, चले जाओ यहां से। दरवाजा धाड़ करके बंद कर देती। तो शिवजी महाराज को दुखी हो जाते हैं, अरे इतने दूर से आए, इतनी अभिलाषा लेकर, ठाकुर जी का दर्शन होगा बाल रूप का, जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि भगवान जो है अपनी लीला के माध्यम से, इच्छा से माता के कब्जे में है, अभी अपने आप को माता के गोद में उन्होंने कैद कर लिया है। आई एम योर प्रॉपर्टी, जो चाहे आप कर सकते हो। भगवान जो है ना, जहां भक्ति होती है ना, और अपने आप को बेच देते हैं भगवान, सुपुर्द कर देते हैं, ही सेल्स हिमसेल्फ टू अ प्योर डिवोटी। नचाओ जैसे आपको नचाना है, नचाओ, मैं आपके गोद में हूं, आपके सहारे हूं, असहाय बनकर आपके गोद में हूं, ऐसे भगवान लीला करते हैं गोलोक वृंदावन से यहां पर आकर। तो देख रहे हैं कि परम भगवान, परम नियंता, परम निर्माणकर्ता, जगन नियंता जो है, बालक बनकर अभी नंद महाराज और यशोदा के घर में कैद है, प्रेम की कैद में, क्या करें अभी, इनके अंडर अभी अथॉरिटी है उनकी, इनको ही मनाना पड़ेगा, लेकिन वो मान नहीं रही है, क्या करें, एकदम दुखी हो गए, निराश हो गए। और यहां पर आकर बैठे, ये है आशेश्वर वन, यहां पर हम लोग बैठे हैं, वहां शिवजी भी आकर बैठते हैं और रो रो कर पुकारते हैं। ये बहुत सुंदर वन है, यहां पर शिवजी महाराज ने वो आदर्श स्थापन किया है कि कैसे भगवान को पुकारा जाता है। हम सब पुकारते हैं, हरे कृष्णा, लंच में क्या है, लडुआ है कि जलेबी है, हाँ क्या कचौड़ी मिल रही है कि ना मिल रही है, वो क्यों नहीं बन रहा है, दाल बाटी क्यों नहीं बन रही है, हाँ चूरमा क्यों नहीं बन रहा है, पत्नी कैसी है, बालक क्या कर रहा है, काम पे जाना है, कहाँ पर पैसा लगाओ मेरा दुगना हो जाए, उसने ऐसा क्यों बोला हरे कृष्णा, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हरे राम ऐसा हमारा जप होता है, हा? मतलब भगवान कहीं और रहेगा, हम कहीं और हैं शरीर से यहां पर है लेकिन मन कहीं और घूम रहा है अपना। शिवजी महाराज ने ऐसा भजन नहीं किया, यहां पर शिवजी महाराज ने तड़प तड़प के भजन किया है, रो रो के भजन किया है, बहुत दिन तक रोए बैठकर यहां पर। अभी ठाकुर जी हमारे बड़े भक्तों के वत्सल है ना, भक्त वत्सल है वो, ये सब लोग भक्त हैं, यशोदा भी भक्त हैं, नंद महाराज भी भक्त हैं, सब सखा भक्त हैं, लेकिन शिवजी महाराज भी भक्त हैं भगवान के, वैष्णवानां यथा शंभु, वो बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव माना गया है, शास्त्र कहता है। तो बालक रूप में है लेकिन भगवान तो भगवान ही है ना, बालक रूप में तो क्या हुआ, अंतरिया में जानते मेरा भक्त रो रहा है, आशेश्वरवन में रो रहा है मेरा भक्त, उसके लिए भी कुछ जुगाड़ करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपना सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो निकालती, बालक का सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा होता है, उसका रोना, उसके सामने बड़े बड़े महारथी बाहर जाती, चक्रवर्ती सम्राट भी होगा कोई राजा, लेकिन उसका बच्चा रोता है तो वो असहाय हो जाता है कुछ नहीं कर सकता है ना, बालक के सामने कौन जीत सकता है बताओ, बहुत कर्रा आदमी होगा बाहर, सब डरते होंगे उसके, लेकिन बालक उसके सर पे चढ़ के नाच करता है हमने देखा हुआ है बहुत बार, ऐसे दुनिया डरती है उस माता से, उसके तेज से, उसके क्रोध से, उसका बालक जो है उसको नचाता है अच्छी तरह से, बालक के सामने सब लोग असहाय होते हैं। तो माता ने क्या किया, पहले मक्खन दिया, भूख लगी होगी बालक को तो मक्खन दिया, मक्खन थूक दिया उसने, नहीं चाहिए मक्खन, फिर खिलौना दिया, घोड़ा दिया, गाड़ी दिया, जो कुछ उसको रुझाता है हर चीज वो सब दिया, सबको भगवान ने फेंक दिया, और जितना चीज दिया उतना जोर से रोने लगे मक्खन दिया और मक्खन फेंक दिया और जोर से रोने लगे, तो और कुछ दिया तो और जोर से रोने लगे, तो इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, परेशान हो गए, सब सखी आई, सब ग्वाल बाल आए, सब बड़े बुजुर्ग आए, क्या करे अभी, क्या करे बालक को, वैद्य को दिखाए, हकीम को दिखाए, क्या करे, इलाज करे, बीमारी हो गई, कुछ पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। उतने में पूर्णमासी आती है, क्योंकि वो गुरु है ना, उसको बुलावा आता है कि बच्चा रो रहा है तो क्या करे, कुछ गाइड करो, सलाह करो, सबकी सलाहकार है वो, गुरु है गोपियों की। वो कहती है कि अरे वो जो बाबा आए थे ना, शायद उनकी कृपा से कुछ हो जाए, संतों की कृपा से क्या नहीं होता है, भगवान से भी बढ़कर संतों की कृपा होती है, तो संत को ही बुला लो, हो सकता है अरे बड़े दूर से आए थे, वो पता है ना उनके पति है ना, वो जानते हैं कहां से आए, तो बड़े बड़े बाबा है वो, बहुत जोरदार बाबा है, बड़े सिद्ध बाबा है वो, उनकी कृपा से शायद रोना बंद करेगा ये। तो यशोदा मैया तुरंत सखियों के भेजती है, जाओ जाओ बाबा को बुला ले आओ, मैंने सुना है कि वो जंगल में उठकर रो रहा है। भाई देखो यशोदा माता का देखो कैसा व्यवहार है, सोचो आप, वही माता है, उसने उसी बाबा को भगा दिया था, किसके लिए, पुत्र की सुरक्षा के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी उसके बाबा से, अपने पुत्र के रक्षा के लिए उसको भगा रही है और अपने पुत्र की सेवा के लिए उसी को बुला रही है, देखो कैसा भाव है उनका। यशोदा नंद महाराज ग्वाल बाल सबका एक ही ध्यान है, कृष्ण की सुरक्षा, कृष्ण की सेवा और कृष्ण की सेवा बस, और उनके मन में कुछ नहीं, उसके लिए वो कभी उल्टा काम करेंगे कोई उल्टा काम करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे कृष्ण के लिए। तो वही माता जो क्रोध करके गुस्सा करके दरवाजा पटक दिया था उसने इसके मुंह पर, उसी को सम्मान से बुलाने जा रही है, सखियों को लेकर सम्मान से बोले, महाराज जी नंदरानी बुला रही है आपको। अच्छा नंदरानी बुला रही है, तुरंत रोना बंद और भाग के चले जाते हैं नंद भवन पे। तब ये रोती रोती इस नंदरानी जो है रोते रोते बालक को लेकर बाहर आ जाती है और इसके चरणों को शिवजी महाराज छूते हैं और तुरंत बालक जो है रोना बंद कर देता है। जब बालक हंसता है नंदरानी में हंस देती है, बाबा जी आप तो बड़े महान बाबा हो बहुत बढ़िया, मैं भी यकीन हो गया मेरे कि आप कंस के दूध नहीं हो आप तो बड़े सिद्ध बाबा हो। तो यही वन है वो, जहां पर बैठकर रो रो कर शिवजी महाराज ने पुकारा था, और उसके फल में भगवान ने जवाब भी दिया था और दर्शन दिया था श्री शिवजी महाराज को। इसलिए इनका नाम है आशेश्वर महादेव। अब सब लोग आशा पर जीते हैं ना कि अभी गरीबी है कभी धन आएगा, और बीमारी है कभी बीमारी अच्छी हो जाएगी आगे जाकर, अभी बालक नहीं है आगे बालक होगा, रहने को एक घर होगा, खाने को हलवा होगा, बिस्तर कपड़े सब कुछ होगा, इस स्तर इस इच्छा में सब रहते हैं ना जिंदगी में, अभी नहीं आगे होगा, बहुत सारा सोचते रहते हम लोग। लेकिन हमको आशा जो है वो भगवान के लिए करनी चाहिए कि आगे जाकर भगवान मिलेंगे, फिर हम गौलोक में जाएंगे, फिर वहां पर रहेंगे, फिर ठाकुर जी की सेवा करेंगे। क्या कहते हैं भक्त लोग, महल राजी का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, रिझाएंगे उनको भी कुंजों में जाकर, हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे, जाएंगे कुंज कुंज में झाड़ू लगाएंगे और भाग्य हुआ तो उनका दर्शन भी कर लेंगे। ऐसा इच्छा करना चाहिए हमको। हाँ, यहाँ पर घूमने को आ रहे हैं हम लोग, आनंद ले रहे हैं, अच्छा मौसम है, धूप ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर परमानेंटली भगवान की सेवा करेंगे ये इच्छा होनी चाहिए। अगर ऐसी इच्छा हुई तो जीवन सफल है, तो कपड़ा लत्ता घर गाड़ी तो सबकी होगी, लेकिन सब कुछ यहाँ ही छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ नहीं साथ में आएगा हमारे। शिवजी महाराज ने यहाँ पर कैसे इच्छा करनी चाहिए इसका एक आदर्श स्थापन किया है, ना कहने पर भी कैसे हाँ कहलवाना है उनसे, है ना, मना करने वाले व्यक्ति को भी हाँ करवाने के लिए मजबूर कर दिया ना उन्होंने। भगवान भी बड़े व्याकुल हो जाते हैं जब भक्त रोते हैं, इसलिए हमको रो रो कर पुकारना चाहिए उनको, यहाँ वहां मन भटक रहा है, इधर उधर देख रहे हैं क्या हो रहा है, हरे कृष्णा क्या होगा, तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, इतना जब कर रहे हैं फिर भी पगार नहीं बढ़ रही है, क्या फायदा है, नंदगांव में कुछ है नहीं है, बंबई जाना चाहिए, नंदगांव में क्या है, इधर ना नौकरी मिल रही है ना कुछ कंपनी है, बंबई में इतना आनंद है, बंबई जाना चाहिए, ऐसे सोच के फायदा क्या है। सब धन तो यही है, हम लोगों को आशा करने को सीखना चाहिए, क्योंकि आशा करना होता है ना, टू डिजायर ऑल्सो इज अ साइंस, It's not this ordinary to just desire, and just desire. Desiring is a science, how to desire. तो भक्ति का मार्ग का मतलब क्या है, कैसे इच्छा करनी है, ये सीखने का साइंस भक्ति का साइंस है। What to desire, how to desire, and how to intensely desire, कैसे तीव्रता से इच्छा करनी है, इसका साइंस भक्ति का साइंस है। वो शिवजी महाराज ने यहां पर उसका कॉलेज खोला है, यूनिवर्सिटी, पीएचडी का यूनिवर्सिटी है ये, पीएचडी इन आशा, पीए, डॉक्टरेट इन आशा, इन डिजायरिंग, हाउ टू डिजायर फॉर कृष्ण। उन्होंने यहां पर रो रो कर आंसू बहाए हैं, तब जाकर मजबूर होकर भगवान ने रो रो कर शिवजी महाराज को दर्शन दिया है, बुला बुलाकर प्रेम से, सब दुनिया विश्व के लिए, सभी देवताओं के लिए, सभी वैष्णवों के लिए शिवजी ने यहां पर आदर्श स्थापन किया है। हम शिवजी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो हमने सुना था संतों से कि आज शिवजी और पार्वती का विवाह का दिन है, बराबर है ना, हाँ जन्मदिन नहीं शिवजी का, आज शिवजी का और पार्वती का मैरिज एनिवर्सरी है, हाँ तो सब लोग उनको विश करो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन वो तो बाहर की बात है, उनसे प्रार्थना करो। शिवजी महाराज और पार्वती देवी ने त्रैमासिक व्रत करके यहां पर चिरंतन निवास प्राप्त किया है, बहुत देवताओं को यहां प्रवेश नहीं है, गणेश जी काम मन में निवास कर रहे हैं भगवान की चतुर्भुज विष्णु के आशीर्वाद से, हनुमान जी रक्षा करने के लिए रहते हैं, और चक्र को स्थान दिया है चक्र तीर्थ में, और बचे हुए शिव जी और पार्वती, और यहां पर किसी को प्रवेश नहीं है परमानेंट रहने के लिए, आओ और जाओ, रात को निवास का रूम अवेलेबल नहीं है यहां पर उनके लिए, नो रूम अवेलेबल इन द नाइट, दिन में खाली रहो, मीटिंग करो और जाओ। और हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनको भी उन्होंने यहां पर आसरा दिया है बरसाने में, लेकिन व्यक्ति रूप में नहीं, पत्थर के रूप में। शिवजी महाराज को व्यक्ति रूप में आसरा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवजी महाराज तो परम वैष्णव है, इसलिए हमारा भाग्य है कि हम शिवरात्रि के दिन आशीश्वर महादेव से आए। प्रार्थना करो उनसे कि हमें वो आशा दो, हमारी सारी अन्य आशाएं जो है नष्ट होनी चाहिए। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण सेवनम भक्ति उत्तमम। भगवान को छोड़कर जो अन्य अभिलाषाएं हैं उनसे मुक्त कराओ हमको, और एके हम कुरु नंदन, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके हम कुरु नंदन, हमें एकाग्र बना दो उनकी इच्छा पर, हमारी इच्छा से हमारी इच्छा उनकी इच्छा से मिला दो। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन उनसे मिलती जुलती नहीं है, वो ऐसी इच्छाएं बना दो जो उनकी इच्छा से मिलती जुलती हो, उनसे एक हो, और उनकी इच्छा हमारे इच्छा के खिलाफ भी हो, हमको दर्द देने वाली हो, फिर भी उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो उसको, क्योंकि उनकी इच्छा हमारे कल्याण के लिए होती है। समझो कोई किसी का बालक मर गया, अरे 25 साल के भजन कर रहा हूं, हमारे बालक को मारना था भगवान को, और कोई बालक नहीं था पापी का, हम भजन करने वाले हैं, फिर भी हमारे बालक को मार दिया। नारद मुनि छोटे से बालक थे पिछले जन्म में, उनकी माता शुद्राणी थी, उसने संतों का बहुत सेवा किया, बहुत संतों का, उसका नाम था भक्ति वेदांत स्वामी, हमारे गुरु जी का नाम भी वही है परम गुरु जी का, लेकिन भक्ति वेदांत तो उनका नाम है जो भक्ति और वेदांत वेद का अंत जान चुके हैं। ऐसे भक्ति वेदांत वहां पर भजन कर रहे थे, उनका सेवा किया नारद मुनि के पिछले जन्म में माता के साथ में, और माता मर गई उनकी छोटे से बालक को छोड़कर। आप कहेंगे कितने दुष्ट भगवान है, कितना असहाय बालक, वो भक्त है, उसकी माता भक्त थी, तो बालक को सहारा भगवान ने निकाल दिया। लेकिन नारद मुनि ने, मतलब उनका नाम नारद मुनि बाद में पड़ गया, उस जन्म में बालक ने ऐसा नहीं सोचा कि भगवान ने हमारे पर अन्याय किया। उस माता की केवल एक झोपड़ी थी, इतनी प्रॉपर्टी थी उसकी, तो नारद मुनि ने उसी झोपड़ी के अंदर माता का शव रखा और जला दिया उसको झोपड़ी के साथ, जो भी आखिरी अटैचमेंट है घर का वो भी कैंसिल कर दिया, और वो जंगल में चले गए और अकेले भगवान का तप किया उन्होंने। तब जाकर अगले जन्म में वो नारद मुनि बने। वो नारद मुनि के जन्म में उनको भगवान ने ऐसा वरदान दिया कि आप कहीं भी जाओ तो बताओ माता मर गई, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हाँ जरूर बुरा हुआ, बालक को अनाथ करके चले गई वो, लेकिन उसके पीछे बड़ा उद्देश्य था, छोटे दुख के अंदर बड़ा उद्देश्य था भगवान का, भगवान ने सिद्ध किया। तो हमको समझता नहीं ऐसे कभी जीवन में क्या होता है, कभी कुछ धन का चोर लूट गए। हमारे जो प्रभुपाद महाराज है ना, उनकी बड़ी कंपनी थी केमिस्ट की, दवाइयां बेचते थे वो, और उनके गुरु ने उनको बहुत पहले आदेश दिया था कि विदेश में जाओ और प्रचार करो भगवान के धाम भक्ति का, तो वो कोशिश कर रहे थे जाने का, उनका बिजनेस भी था, बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, परिवार था, तो बोले कब जाएंगे कैसे जाएंगे, तो उनके सारे जो थे ना कर्मचारी कंपनी के, सब ने उनकी कंपनी लूट ली पूरी, सब सामान लूट के लेके गए वो। तो प्रभुपाद को खबर मिली भक्ति विदान स्वामी को, मतलब उस समय तो ग्रस्त थे वो, अभयचरण नाम था उनका, खबर आई कि हमारी जो इलाहाबाद की कंपनी है वो सब कर्मचारी लूट के लेके गए, घड़ी तक ले गए, सब ले गए, लूट गए पूरा। तो ताली बजा कर हंसने लगे वो कह रहे हैं तस्या हम अनुगामी हरिष्य तदनम शनै, जिससे मैं प्रेम करता हूं और जो मुझ पर प्रेम करते हैं उनका सारा चीज मैं शनै शनै धीरे धीरे सब छीन लेता हूं। क्यों छीन लेता हूं? तो असहाय हो जाते हैं तो मुझ पर ही सहारा लेते हैं और तीव्रता से, इसलिए बाहरी दृष्टि से बहुत दर्द होता है लेकिन अंदर से मैं उनको मेरी ओर खींचता हूं। इसलिए पांडवों का राज्य छीन लिया, द्रौपदी राजकन्या थी, बड़ी राज स्त्री थी, वो जंगल में भेज दिया उनको नंगे पैर घूमने के लिए, कंद मूल खाने के लिए, कोई पकवान न खाने के लिए नहीं, पेड़ के नीचे रहने के लिए, नंगे पैर चलने के लिए, पत्थर से और कंकड़ से सब छीन लिया उनका। लेकिन उस छीने हुए अवस्था में वो भगवान के बहुत पास थे, पूर्णतः भगवान पर निर्भर थे वो, फुल्ली सरेंडर टू द लॉर्ड, डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। इसलिए भगवान की तरफ से हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे लिए बुरा भी लगे तो उसको धन्यवाद करके एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा को जोड़ देना चाहिए। यीशु क्रिस्त ने बाइबल में यही कहा है, थाय विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए और हमारी इच्छा आपके साथ जुड़ जानी चाहिए। तो यहां पर आप शिवजी महाराज से प्रार्थना करो कि हमें वो ट्रेनिंग दे दो, हमारी वो ऐसी परवरिश करो कि हम अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर केवल आपकी इच्छा को सर पर रख के चलें। तेरे प्यार में मनमोहन हम सब कुछ लुटा चले, सब कुछ लुटा लुटा के भी हंसते हंसा चले। तेरे प्यार में मनमोहन हम सब कुछ लुटा चले। प्रार्थना करो, ना कोई दर है ना कोई घर है अपना, पाई जहां भी चर्चा तेरी रुकते वहां चले। जहां भी आपकी कथा हो रही है वहां पर रुक गए, नहीं तो ना घर है ना कोई दर है। यही भक्तों की इच्छा है और यही प्रार्थना करना चाहिए। ये दुनिया में घर बनाया है, जब जाएंगे तो छोड़ के जाना पड़ेगा, वसीयत बना के जाना पड़ेगा, साथ में कुछ नहीं मिलेगा अपने को। वही घर बनाओ जहां परमानेंट घर हो। यीशु क्रिस्त ने भी यह कहा है, अपना घर इस दुनिया में मत बनाओ, उस दुनिया में बनाओ जहां पर भगवान रहते हैं। तेरे प्यार में मनमोहन हम सब कुछ लुटा चले। भजन गाना बहुत आसान है लेकिन लुटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहां पर प्रार्थना करो कि लुटाने को हेल्प करो। जब भगवान को छीन लेते हैं तो हमें थैंक यू बोलने की बुद्धि दो, रो मत उस समय। ऐसे प्रार्थना करो आप। शिवजी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े भोले बाबा हैं। हाँ, ये ब्रजवासी लोग बहुत मानते हैं शिवजी बाबा को, बड़ी जल्दी कृपा कर देते हैं, गुस्सा भी जल्दी करते हैं लेकिन कृपा भी बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना करो कि भगवान के चरणों की भक्ति दो, जो आपके अंदर है थोड़ा सा उसका हिस्सा भी हमको दे दो। बोलो शिवजी महाराज की, आशेश्वर महादेव की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्री कृष्ण बलराम की, यशोदा माई की, नंद बाबा की, सबग्वाल वाल की, नंद गांव की, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।